Essa verdade, essa felicidade. Está caído sem desse jardim. E किसी साहब ने पूछा है कि कुछ औलिया अल्लाह के बारे में पता चला है कि वो एक दिन में लाखों की तादाद में दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, ये कौन सी डायमेंशन है, हम ऐसा क्या करें कि हमारे वक्त में भी इतनी वसत और बरकत पैदा हो जाए। इसके अंदर दो मेजर फैक्टर्स काम करते हैं। एक तो ये है कि फकीर लोग आम तौर पर तन्हाई में रहते हैं, उनके फराइज कुछ इतने कम हो गए होते हैं, ये कर लिए गए होते हैं कि वो उनकी मसरूफियात कोई होती नहीं है, यूं कह लीजिए आप। तो वो अपना तमाम वक्त याद इलाही में गुजारते हैं। जबकि आम आदमी उसकी फैमिली लाइफ है, रोजगार के मामलात हैं, बच्चों के बखेड़े हैं, रिश्तेदारियां निभाता है वो, फिर रिश्तेदारों की गमी खुशी सब में शरीक होता है, तो उसके पास इतना वक्त नहीं होता। जबकि ये लोग तन्हा रहते हैं, लोगों से दूर अलूफ, तो तमाम वक्त बैठे दुरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं या जो भी जिक्र अज़कार हैं उनके, वो तो यूं तादाद काफी हो जाती है। दूसरा फैक्टर ये है कि ये पढ़ पढ़ के ये ऐसी प्रैक्टिस इन्हें हो जाती है कि वो आपसे बात कर रहे होंगे लेकिन दिल में उनके दुरूद शरीफ जारी रहता है। और एक तीसरी बात ये है कि हम मुबालगा और गुलू से हर चीज में काम लेते हैं, तो हजारों की तादाद को लाखों की तादाद बयान कर दिया, तो एक वो फैक्टर भी है। तो इसे तो कोई भी आदमी ये अपना सकता है कि दुनिया से कट जाए, लोगों से नहीं मिले। और इसीलिए जनाब हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह साहब ने फरमाया था कि फकीर पर लाजिम है कि वो कम से कम लोगों से मिले। उससे दो तरह के फायदे हो जाते हैं, एक तो उसके इबादत के मामूलात वो डिस्टर्ब नहीं होते, दूसरा जितना लोगों से कम मिलेगा उलझने उतनी ही कम होंगी, तो जहनी तौर पर इंसान मुंतशर नहीं होता। फिर एक सवाल ये है कि जो शख्स हर वक्त हालत हजूरी और मुशाहदा हक में मशगूल रहता है, क्या वो इसी हालत में शरई तकाजों और अहकाम की अदायगी से मुबर्रा समझा जाएगा? कतई तौर पर नहीं। जो शरई पाबंदियां हैं, शरई फराइज हैं, वो सब पर यकसा तौर पर लागू हैं, कोई उससे मुबर्रा नहीं होता। हाँ, उसका जो फालतू टाइम है बजाय दूसरों के साथ बातें करने में, अगर वो खामोशी से रह के मुशाहदा हक में या हालत इस्तगराक में रहता है, वो बहुत काबिले स्ताइश चीज है, कमेंडेबल चीज है वो। तो जो फराइज हैं, शरई फराइज हैं, उनको अदा किया जाना चाहिए हर हाल में। उसके अलावा जो फालतू टाइम है उसमें हम बजाय सोशलाइज करें, तो अगर हम गौर व फिक्र में वक्त गुजारें तो ज्यादा सवाब का कायम हुआ। एक अगला सवाल इनका है कि कभी मुरीद जरा सी टफ सिचुएशन में मुर्शद की तरफ रहनुमाई के लिए रजू करता है, तो कभी इंतहाई मुश्किल हालात में भी वो उनसे हर बात छुपाना चाहता है ताकि अल्लाह पर अपना तवक्कल मजबूत कर सके। ऐसे में आके मुर्शद साहब इन हालात से मुताल्लिक कोई सवाल करें तो मुरीद खामोश रहे या डिस्कस कर ले। ये इंसान की ज़हनी कैफियत की बात होती है। कुछ लोग, ये डिपेंड करता है कि हम मुर्शिद को समझते क्या हैं। तो अगर तो मुर्शिद को इसलिए हमने मुर्शिद माना है कि हम मुश्किलात से बचे नहीं, तो मेरे ख्याल में ये वैसे ही मुनासिब नहीं है बात, इसलिए कि मुश्किल कुशा तो सिर्फ रब है। अगर उन्हें गाइड माना है तो आगे जाके इसकी भी दो पहलू निकल आएंगे, एक दुनियावी गाइड है और एक इल्मी गाइड है। तो गाइड से मशवरा किया जा सकता है, उससे रहनुमाई ली जा सकती है। अब यहां पर आके सवाल ये पैदा हो जाएगा कि अगर मुरीद ने सही आदमी को अपना गाइड पकड़ा है तो वो तो मुर्शिद तो पहला एक काम करेंगे शुरू ही में कि अपने पास आने वाले जो करीबी लोग हैं, शागिर्द जिनको उर्फ आम में कह लीजिए आप, कि उनके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल देंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देंगे कि अगर इंसान ने दुनिया में जिंदा रहना है, अगर जिंदा है कोई शख्स तो ये रोजमर्रा की मुश्किलात पेश आती ही रहेंगी, तो मैं अपना और अपने मुर्शिद साहब का वक्त इन गैर अहम छोटी छोटी चीजों पर क्यों जाया करूं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि असल चीज तो यह है कि रब के रास्ते पर चला दे मुर्शिद हमें, तो फिर ये दुनियावी मामलात बिल्कुल ही पसे पुष्ट चले जाते हैं, उनकी अहमियत रहती ही नहीं इंसान की। तब तो डिपेंड करता है कि मुरीद मुर्शिद के पास किस मकसद से जा रहा है। एक और जो चीज तजर्बे में आती है इंसान के कि लोग मुर्शिद के पास जाते हैं कि हमें रूहानी इल्म अता कर दीजिए, रूहानी इल्म दे दें आप, आज कुछ तोहफा दे के भेजिए। हमें एक बात अपने जहन में पूरी तरह क्लियर कर लेनी चाहिए कि रूहानियत तसव्वुफ, रूहानी इल्म ये ना तो गठरी में बांध कर दिया जा सकता है किसी को कि ये ले लीजिए आप और जाके मजे कीजिए। ना ये इंजेक्शन के जरिए से लगाया जा सकता है किसी को कि उसके खून में शामिल कर दिया जाए इंजेक्शन के जरिए से, ना ये ऐसी चीज है कि एक लफ्ज बताने से किसी को आ जाएगा वो, बल्कि अगर आज मुर्शद आपके बहुत साफगोई से काम लें आपके साथ, तो वो आपको क्लियरली बता देंगे कि साहब ये तो एक ऐसा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो आप सारी उम्र जारी रहेगा आपका, और तस्बीहात तो सिर्फ आपकी तवज्जो मरकूज करने की प्रैक्टिस है एक, रूहानियत हासिल होती है इंसान को अपने दुनियावी रवैयों को तब्दील करने से, अपने रवैयों को सुन्नत के ऐन मुताबिक कर लेने से, और एक रवैया दो रवैये या कुछ मामलात में नहीं बल्कि तमाम की तमाम जिंदगी के रवैये में, तमाम रवैये उनको सुन्नत के मुताबिक ढाल लिया जाए तो इंसान रूहानियत पे खुद ब खुद चढ़ जाता है, या यूं कहिए कि रूहानियत उसे अज खुद हासिल हो जाती है। तो ये एक मुस्तकिल अमल है। हम गलत समझते हैं कि मैं अगर किसी के पास गया तो उन्होंने मुझे ये कह दिया कि ये पढ़ लिया कीजिए तो मुझे रूहानियत हासिल हो गई, बिल्कुल नहीं होगी। ये सिर्फ इंसान के कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्लियर होने चाहिए कि रूहानियत मिलती कैसे है, किन लोगों को मिलती है। आप कभी नोट कीजिए, औलिया कराम के पास जाइए, 10 20 30 औलिया कराम के पास, उनके अंदर सारी चीजें आपको कॉमन मिलेंगी, जितनी बुनियादी चीजें हैं, खुले दिल से माफ कर देने वाले होंगे वो सबके सब, इसलिए कि सुन्नत है। किसी की ज्यादती का जवाब ज्यादती से नहीं देंगे, मुस्कुरा के टाल जाएंगे उसकी ज्यादती को, इसलिए कि यह सुन्नत है। खुद अपने मफाद की कुर्बानी दे देंगे दूसरे के मफाद के लिए कि यह सुन्नत है। दूसरे को अकोमोडेट कर लेंगे खा खुद कितनी भी तकलीफ क्यों ना उठानी पड़े, और मजा यह है कि बहुत तकलीफ उठाएंगे किसी पर जाहिर होने नहीं देंगे कि तुम्हारी खातर मैंने कितनी तकलीफ बर्दाश्त कर ली है। ये रवैया कॉमन मिलेगा कि सुन्नत है। खुले हाथ के होंगे, खुले दिल के होंगे, बड़े जर्फ के होंगे, इसलिए कि सुन्नत है। किसी की ऐब जो ही नहीं करेंगे कि रब ने मना किया है, दूसरों के ऐबों पर पर्दा डाल लेंगे कि हुक्म ऐसे ही है, ये सब रवैये सबके कॉमन होंगे। तो ऐसा नहीं है कि पहले रूहानियत हासिल हुई और फिर उनके उसके बाद उनके रवैये पैदा हुए, बल्कि इन रवैयों के नतीजे में रूहानियत हासिल हुई है कि रब के करीब हुआ है बंदा। तो हमें मेजर एम्फेसिस जो है हमारा जिंदगी का, वो बजाय मुर्शद साहब के पास जाके हर मर्तबा ये कहने के साहब मुझे रूहानियत दे दीजिए, पुड़िया में बांध के आपको नहीं दे पाएंगे, वो रास्ता दिखा देंगे कि इस रास्ते पे चलो, चलना आपने है, उन्होंने नहीं चलना है, वो तो अपने हिस्से का रास्ता तय कर आए। तो अपने रवैयों को तब्दील करके हम रब के करीब हो सकते हैं। अगर रवैये हमारे सुन्नत के मुताबिक हो गए तो रब के करीब चले जाएंगे, रूहानियत मिल जाएगी। तो अगर मुर्शद आपसे किसी मौजू के बारे में पूछ लेते हैं, आपकी जिंदगी का फला मसला क्या हुआ, तो आप उनको फौरी तौर पे मुख्तसर लफ्जों में बता दें, ये मैं आपसे कह रहा हूं कि मुख्तसर लफ्जों में बता दें। लेकिन मेरा अपना ये हाल है कि कभी आप गलती तो कर लीजिए ये पूछने की कि आपकी तबीयत कैसी है। तो पैदाइश से लेके अब तक जब मैं बीमार हुआ हूं मैं उसकी पूरी तफसील पहले बताऊंगा आपको। फिर आप मुझे लाख कहते रहिए साहब मेरी अपॉइंटमेंट है, मुझे वहां वक्त पे पहुंचना है। जब तक मैं अपनी कहानी बयान न कर लूं मैं जाने नहीं दूंगा आपको। तो अगर कहीं रब ताला ये इनायत कर दे कि ये समझ अता फरमा दे कि हमें ये पता चल जाए कि जब हम अपनी तकलीफ अपने ही जैसे इंसान के सामने बयान करते हैं तो वह नाशुक्र शुक्रगुजारी का एक पहलू है। तो उसका जवाब यह है कि साहब अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत एहसान है परवरदिगार का, बड़े अच्छे हाल में रखा है मुझे। तो अगर मुश्किल में है भी तो इस शुक्रगुजारी से खुश होकर रब ताला की रहमत से उम्मीद यह है कि रब आपको मुश्किल से निकाल लेगा। इनका अगला सवाल यह है कि अगर दो औलिया अल्लाह के मजारात पास पास हों तो पहले वली अल्लाह किसी और सिलसिले और तसव्वुफ के हों तो हाजिरी की तरतीब क्या होनी चाहिए। सबसे ज्यादा अहमियत और अव्वलियत मेरे मुर्शद साहब को हासिल है। तो मैं अगर हाजिरी दूंगा तो इवन मेरे वालदेन की मदफन भी अगर करीब है मेरे मुर्शद साहब के तो मैं पहले मुर्शद साहब की खिदमत में हाजिर होकर सलाम अर्ज करके फिर वालदेन के पास बाजार पे जाऊंगा। तो मुर्शद, अगर मुर्शद नहीं है तो हमारे अपने सिलसिले के जो बुजुर्ग हैं मैं सबसे पहले उन्हीं के पास हाजिरी दूंगा और उसके बाद दूसरों के पास जाऊंगा, चाहे मकाम में कितने ही बड़े क्यों ना हो। इनका अगला सवाल यह है कि किसी वसाल शुदा वली अल्लाह से अकीदत महसूस होती हो तो इस अकीदत के इजहार का बेहतरीन तरीका क्या है। देखिए औलिया कराम के बारे में एक चीज की जुस्तजू में रही है वो ये कि उनकी तालीमात क्या है। इस जुस्तजू में हम ना रहे कि उनका मकाम क्या था, उनकी करामात क्या थी, वो किस दर्जे के मुस्तजाब दावात थे। कुरेद इसकी नहीं होनी चाहिए, कुरेद ये होनी चाहिए कि उनकी तालीमात क्या हैं, क्योंकि वो तालीमात वो हैं जिनके जरिए से वो उस मकाम तक जा पहुंचे हैं, उस मकाम को हासिल किया जाए। तो अकीदत के इजहार का बेहतरीन तरीका भी ये है कि उनके फरमुदात पर, उनकी तालीमात पर अमल कर लिया जाए। इनका एक सवाल है कि रूहानियत की राह पर चलने वालों की कभी कभी हर जाने अनजाने छोटे बड़े अपने गैर की तरफ से बिला वजह इज्जत अफजाई होती रहती है और उसकी बाकायदा एक सीरीज चलती है। कहीं सफाई या वजाहत देने की कोशिश की तो सीरीज लंबी हो गई, ये सब क्या सिलसिला है। ये जो इज्जत में इजाफा होता रहता है वो तो बड़ी मामूली चीज है। इसलिए कि इंसान आजमाया ही इस तरीके से जाता है कि राह चलते हुए कोई आदमी बड़ी आसानी से बगैर किसी कसूर के इज्जत अफजाई कर देगा। अब वो टेस्ट आया है मेरे सब्र का और मेरी बर्दाश्त का, तो मैं खामोशी से मुस्कुरा के उसको देख के गुजर जाऊं तो मैं अपने टेस्ट में पास हो गया। इसी तरह कोई शख्स आके बगैर किसी राइम एंड रीजन के मेरी इज्जत में इजाफे करना शुरू कर देगा, तो आराम से तसल्ली से बैठे रहिए और एंड पे बहुत पोलाइटली हंसते हुए बड़े प्लेजेंट वे में उससे पूछ लीजिए कि क्या खिदमत कर सकता हूं आपकी। इम्तहान आदमी इस इम्तहान में टेस्ट में पास हो गया तो हमते लगती हैं, बहुत लगती हैं। आप किताबें उठा के देख लीजिए, औलिया अकराम की हिस्ट्री यही है, औलिया अकराम पर तोहमते लगती रहेंगी, बहुत बड़ा इम्तहान है। तो बजाय अपने आप को डिफेंड करने के एक बार मुस्कुरा दीजिए, अपनी राह चल दीजिए, कुछ अरसे के बाद रब खुद ब खुद उन तोहमतों के बारे में पोजीशन क्लेरिफाई कर देता आदमी के, इल्जाम धुल जाते हैं। डिफेंड करने लगेगा इंसान तो जो आपने लिखा है कि सीरीज बड़ी लंबी हो जाती है, वो वाकई जो पंजाबी में कहते हैं पेंडे बड़े लंबे हो जाते हैं। तो आसान तरीन तरीका यह है कि मुस्कुराइए और एक तरफ हो जाइए चुपचाप, और अगर हौसला हो इससे भी ज्यादा तो आज ये कह दीजिए कि अब होता ही है कि आपके पास लोग आके बताएंगे कि साहब फला आदमी है, आप उन्हें जानते नहीं होंगे ना वो आपको जानते होंगे, लेकिन नाम सुना होगा तो आपको दो चार गालियां दे देंगे। कह देंगे अरे वो अव्वल दर्जे का शराबी कबाबी है। तो लोग आके पूछते हैं कि साहब फला साहब तो आपके बारे में ये कह रहे थे, तो अगर हौसला है आप में तो बड़े हंसते हुए कह दीजिए कि भाई वो इतने अच्छे आदमी हैं, इतने भले आदमी हैं, वो क्यों मुझ पर झूठ बांधेंगे, अगर उन्होंने फरमाया है तो यकीन कर लीजिए कि वो सच है, कह दीजिए। उसके बाद देखिए रब ताला आपको क्या इनाम देता है। डिफेंड कभी मत कीजिए, फकीर अपने आप को डिफेंड नहीं करता, वो मुस्कुराता है, खामोश हो जाता है, और अगर बड़े हौसले का है तो कह देगा कि जी आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, सच कहा आपने। कुछ अरसे के बाद आके लोग माफी मांगना शुरू कर देंगे आपसे, तो ये होता रहता है। एक अगला इनका सवाल यह है कि अगर मुर्शद साहब कभी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई हुक्म सादर करें तो क्या मुरीद को सियाक व सबाक की वजाहत कर देनी चाहिए, कहीं ये वजाहत बेअदबी के जिम्मे में तो नहीं आएगी। मगरबी तालीम तो ये कहती है कि वजाहत कर देनी चाहिए, लेकिन हमारे जो मशरकी अंदाज हैं उसमें जो मुर्शद का मकाम है उसका तो तकाजा ये है कि खामोशी इख्तियार कर ली जाए। जी हजूर ठीक है, बस इतने जुमला एक बजाय इरशाद फरमाया जनाब, हुक्म की तामील होगी हजूर, ये अदब का तकाजा तो ये है हमारी राह में। روحانی دنیا میں کچھ اولیاء اللہ کو قدیم کیوں کہا جاتا ہے؟ اب یہ میرے علم میں نہیں کہ معلوم نہیں اس کا کیا, اس سے آپ کی مراد کیا ہے. تو اگر کبھی موقع ملے تو اس کی وضاحت کر دیں, میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. اگلا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کو ان کی زندگی میں روحانی طور پر جس فریکوینسی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضری کی اجازت ہوتی ہے, کیا وفات کے بعد ان کی روح کو بھی اسی فریکوینسی سے حاضری کی اجازت رہتی ہے یا اس میں کوئی تبدیلی آ جاتی ہے؟ ایک بڑی آبویس بات ہے کہ اگر کوئی شخص زندہ ہے اور رب تعالیٰ نے اس پہ اتنی رحمت فرما دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نظر عنایت ہے کہ وہ آدمی کی حاضری ہو جائے, تو مرنے کے بعد تو انسان کے اعمال کا سلسلہ اچھے یا برے وہ ختم ہو جاتا ہے, تو وہ تو پھر یقینی طور پر رہتی ہے اجازت. یہ لاجیکلی میں عرض کر رہا ہوں. اس تجربے سے گزرنے کے لیے مجھے پہلے مرنا ہوگا تاکہ مجھے پتہ لگے کہ مرنے کے بعد حاضری رہتی ہے ہی نہیں, لیکن بدقسمتی سے پھر میں آپ کو بتانے کے لائق نہیں رہ جاؤں گا. یہ اگلا سوال ایک خیال کا, آپ کے خیال میں کائنات کی سب سے بڑی نعمت ایک انسان کے لیے کیا ہے؟ یہ بڑا سبجیکٹو معاملہ ہے, یہ ویری کر جائے گا کہ مین ٹو مین ویری کرے گا کہ کون کس کو نعمت سمجھتا ہے. اگر کوئی آپ جیسا بھلا آدمی ہے, نیک آدمی ہے, تو اس کے لیے تو شاید کائنات کی سب سے بڑی نعمت یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے. کوئی بہت بڑا ولی اللہ ہے, اس کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ رب سے ملاقات ہو جائے. میرے جیسے آدمی کے لیے یہ ہوگا کہ صاحب پاکستان کا جو امیر ترین آدمی ہے اس کی دولت مجھے مل جائے. تو یہ تو مین ٹو مین ویری کر جائے گی بات, نعمت کیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ آپ نے بتایا تھا کہ 70,000 جہان اور 20,000 عالم ہیں, کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنات کا تعلق بھی ایک علیحدہ عالم سے ہے اور یہ عالم ایک عام انسانی آنکھ سے پوشیدہ ہے؟ جنات اسی طرح ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں اسی کرہ ارض پر. بات صرف اتنی ہے کہ وہ آگ سے بنے ہیں, اور میں نے یہاں کسی زمانے میں گفتگو کرتے ہوئے ایک چیز ایکسپلین کی تھی کہ اگربتی کا جو شعلہ ہے, سوری موم بتی کا جو شعلہ ہے, ہمیں جو حصہ نظر آتا ہے وہ شعلے کا یلوش حصہ ہے, لیکن اگر بہت زیادہ غور سے باریک بینی سے دیکھیں تو اس یلو حصے کے ارد گرد ایک ہالا سا ہے بلو کلر کا. लेकिन एक और हाला है जो हमें दिखाई नहीं देता, वो है उसके इर्द गिर्द सफेद, और वो सबसे ज्यादा गर्म एरिया है मोमबत्ती के शोले का। इसलिए आप देखिए कि अगर येलो हिस्से के करीब ना भी हमारा हाथ जाए, उससे वो एक मिलीमीटर के फासले पर ही होगा अभी, तो हाथ जल जाएगा हमारा। वो वाइट हिस्सा है जो इनविजिबल होता है। तो अंग्रेजी में इसको हम वाइट हॉट कहते हैं। किसी चीज के गर्म होने का वो दर्जा जहां रेड हॉट के बाद वो वाइट हॉट हो जाता है, तो ये रेड हॉट से अगली डिग्री है गर्म, किसी चीज के गर्म होने की। तो जन्नात की फॉर्मेशन उस हिस्से से हुई है, इसलिए वो शक्ल बदलने पर अल्लाह ने उन्हें कादिर किया है, और आम इंसानी आंख से वो दिखाई नहीं देते। तो जिन्नात इसी आलम में रहते हैं। इनका एक सवाल यह है कि क्या जिन्नात में कभी नबूवत का सिलसिला रहा है, या इंसानों की तरफ जो पैगंबर भेजे गए वो सब जिन्नात की तरफ भी माबूस हुए? जिन्नात में नबूवत का सिलसिला नहीं है, लेकिन जिन्नात इस्तफादा करते हैं उन तालीमात का जो इंसानों के लिए पैगंबर लेकर आए। अब तो तकरीबन सभी के सभी खत्म हो गए, लेकिन कुछ अर्सा पहले तक उन जिन्नात में से एक दो जिन्नात जिंदा थे जिन्होंने हजरत अली करम अल्लाह वजह के दस्त मुबारक पर इस्लाम कबूल किया था। तो जिन्नात इस्तफादा करते हैं उन्हीं तालीमात से जो इंसानों के लिए पैगंबर लेकर आए। इनका एक सवाल ये है कि बाज़ औक़ात हमारी रूह जो मुशाहिदा करती है, हम हवा से खमसा से उसे महसूस या बयान क्यों नहीं कर पाते? हवा से खमसा का ताल्लुक इसी आलमुल असबाब से है। यह आलम हमारा कॉज एंड इफेक्ट का आलम है, लेकिन रूह की परवाज उन जहानों तक भी है जहां जो इस आलमुल असबाब से बियॉन्ड है, और आम तौर पर वो चीजें याद नहीं रहती। आपने अक्सर नोट किया होगा कि हमें बहुत से ख्वाब आते हैं, ये एहसास तो रह जाता कि मैंने बड़ा अच्छा ख्वाब देखा था, लेकिन याद नहीं रहता कि वो क्या है। इसी तरह बहुत सी चीजें हम देखते हैं, हमें एहसास होता है कि हम इन्हें जानते हैं, पहले से इन्हें देखा था। उसका ताल्लुक रूह की सैर से है। तो रूह बहुत सी चीजों को ऐसी देख लेती है जो हमारे हवा से खमसा से क्लियर नहीं हो, उसमें उसके दायरे इख्तियार में आती नहीं है, लेकिन हम उनको फिर बयान नहीं कर पाते कि हल्का सा एक एहसास बाकी रहता है, लेकिन याद बिल्कुल नहीं रहती चीजें। इसी तरह एक और चीज जिसके बारे में अक्सर लोग सवाल पूछते हैं, हमारी मुलाकात किसी बड़े बुजुर्ग से हो गई ख्वाब में, उन्होंने हमें कुछ चीजें बता दी, तो सुबह जब हम बेदार होते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम अंदर से बहुत खुश हैं कि उन बुजुर्ग से मुलाकात हो गई, लेकिन वो बातें हम भूल जाते हैं, याद नहीं रहती। वो ये होता है कि रूहानी तौर पर अभी हम वहां नहीं हैं जहां उन बातों का हमारे इल्म में आ जाए तो उससे हमें फायदा हो जाएगा, तो ज़हन सी महव हो जाती हैं वो, बस याद रहता है ख्वाब कि ख्वाब देखा था हमने। इनका अगला सवाल ये है कि क्या वफात के 3 दिन बाद हर नेक बद रूह को कयामत तक के लिए गहरी नींद सुला दिया जाता है सिवाय साहिबान ड्यूटी औलिया अल्लाह की रूहों के? बात यह है कि रूह जब परवाज कर जाती है जिस्म से तो आलम बरजुख में चली जाती है, वहां वो खाबीदा नहीं है, वो आलम बरजुख में है। और रूह को ना नींद आती है ना भूख लगती है ना उसकी कोई और ऐसी दूसरी जरूरियात हैं जिसका ताल्लुक दुनिया से हो। अलबत्ता वो जो कहते हैं अब्दी नींद सो गया, उसका ताल्लुक जिस्म से, ये जो 3 दिन का आपके जहन में एक कॉन्सेप्ट मौजूद है असल में उसका ताल्लुक कब्र में होने वाले सवाल जवाब से है। मुर्दे के पास फरिश्ते आते हैं उसे इनिशियल सवाल जवाब करने के लिए, और एक हदीस है जिसका सिर्फ मफहूम बयान कर दूंगा, अल्फाज एग्जैक्ट वो नहीं जो मैं अर्ज करने लगा हूं, कि जब तक लोग वहां खड़े हैं कब्र पर मौजूद हैं फरिश्ते नहीं आते, लेकिन जब वहां से लोग दफनाने के बाद कब्र से लोग रुखसत हो जाते हैं और वो जो 72 कदम वाला कॉन्सेप्ट है वो शायद इसी पर बेस्ड है, तो लोगों के चले जाने के बाद फरिश्ते वहां आते हैं सवाल जवाब करते हैं। वो 3 दिन वाला कॉन्सेप्ट गालिबन वो है आपके जहन में। ये अगला सवाल इनका है कि क्या शेख अपने किसी मुरीद के बारे में पहले दिन ही जान लेते हैं कि उसकी पूरी जिंदगी में रूनुमा होने वाले हालात और वाकयात मसाइब और डिस्टिंक्शंस क्या हैं? देखिए, इल्मे गैब सिर्फ अल्लाह ही को है, ये सिर्फ रब है जो हर एक के दिलों के भेद जानता है। औलिया कराम के पास इल्मे गैब नहीं होता सवाय इसके कि जिस कदर रब ताला चाहे कि वो जान ले, वो उससे मशरूत है। वो ये अगर कोई क्लेम करता है कि मेरे पास मेरे एक मुरीद आए तो मैंने उनकी पूरी जिंदगी को अहवाल को जान लिया, बल्कि इसको यूं कहिए कि कोई अगर ये क्लेम कर ले कि मैं अपने हर मुरीद की जिंदगी तमाम जिंदगी के हालात जानता हूं, उस पर क्या मुसीबतें आने वाली हैं, क्या उसको डिस्टिंक्शंस हासिल होंगी जिंदगी में, मेरे ख्याल में वो कोई ज्यादा दुरुस्त बात होगी नहीं। इल्मे गैब किसी के पास नहीं है, सिर्फ रब ताला के पास है। हाँ, वो जिसे चाहता है अता कर देता है, जितना चाहता है अता कर देता है। तो हर आदमी मोहताज है परवरदिगार का कि वो उसे जिस हद तक कोई अगर इल्म देना चाहे तो इल्म दे दे, जितना हिस्सा दिखाना चाहे वो उसे दिखा दे, अपनी मर्जी से कतई तौर पर नहीं देख पाएगा। ये गलतफहमी है हमारी, उसको दिल से निकाल देना चाहिए। इनका अगला सवाल ये है कि इंसान अपनी जिंदगी के बारे में कुछ पेशगोइयों या वहमों को कभी पूरा होते देखना नहीं चाहता। वो इस सिलसिले में मुर्शिद साहब से दुआ भी कराता है, खुद भी दुआ करता है, लेकिन फिर भी पेशगोई पूरी होके रहती है। इसमें क्या हिकमत है? ये हमारे जहनों में ऐसे सवाल पैदा होते ही रहेंगे जब तक के हमने मुर्शिद के बारे में क्लियर नहीं होना है। मुर्शिद साहब के पास सिर्फ एक इख्तियार है कि वो भी कुली इख्तियार नहीं है। बाज़कात दुआ के लिए जुबान चलने ही नहीं देता रब ताला, दुआ कर ही नहीं पाता पूरी कोशिश के बावजूद भी। तो वो रब के हजूर दुआ तो कर सकते हैं मुर्शिद साहब, लेकिन दुआ को कबूल करना या कबूल न करना रब का इख्तियार है। वो सोली रब ताला का प्रेरोगेटिव है कि किसी दुआ को वो कबूल करे या ना करे। तो ये नहीं हो सकता कि कोई आदमी ये कहे कि साहब मैं तो जो दुआ करता हूं वो पूरी हो जाती है। ये रब का प्रेरोगेटिव है कि किसको वो रद्द करे किसको कबूल करे। इसी तरह कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका इन हजार दूसरे और लोगों की जिंदगी पर भी है, उसके असरात मरतब होते हैं। तो अगर यही मामला हो जैसा हम समझते हैं तो किसी आदमी की जिंदगी में कोई मिसहैप नहीं आए, कोई मायूसी ना पैदा हो, उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम ही ना हो पाए कि अपने मुर्शिद के पास गए उनसे दुआ कराई तो सारी अच्छी चीजें हर आदमी की जिंदगी में होने लगे, बुरी कहां जाएंगी? ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करने होंगे अपने। मुर्शिद साहब बड़े अजमत के हामिल होते हैं सिर्फ इसलिए कि वो तकवे में हमसे ज्यादा हैं। मुर्शिद साहब बड़े काबिले ताजीम हैं सिर्फ इसलिए कि रब ने उन्हें इल्म अता फरमाया है। लेकिन ये कि वो कारखाने कुदरत में कोई दखल अंदाजी कर लें, गलत है। वो इंसान है, रब का इख्तियार, रब का कारखाना, रब की कुदरत वो उसी की है। हाँ, दुआ आदमी कर सकता है, रब कबूल फरमाने वाला है, दुआएं सुनने वाला है, कबूल करने वाला है, पूरी करने वाला है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर दुआ पूरी हो जाए। अगर ऐसा हो तो किसी वली अल्लाह का कोई बच्चा इंतकाल ही ना करे, किसी वली अल्लाह का कोई बच्चा बीमारी कभी ना हो। तो ये सिर्फ रब का इख्तियार है। हम धोखा इसलिए खाते हैं और हमें अपने मुर्शिद साहब से मायूसी होती ही इस वजह से है कि हम उनको ये समझते हैं कि इनको हमने कह दिया बस हमारा काम हो गया। ऐसा नहीं है। आप मुर्शिद साहब की ताजीम कीजिए, उनका अदब कीजिए कि अल्लाह ने उन्हें इल्म अता फरमाया है, वो तक्वा में हमसे बढ़कर हैं, और उनसे यही तवक्कु रखिए कि वो हमें सीधी राह पर चलाएंगे। अगली इतवार तक के लिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।